मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। AFEIS के आज 13 जनवरी 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं और आप सबके साथ ही अभिनंदन करता हूं अपने नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 15 से 29 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस में रजिस्ट्रेशन कराया है, दाखिला लिया है। इन दोस्तों के नाम हैं संदीप सिंह, आपका गांव है अतलपुर, जिला फतेहगढ़ साहिब पंजाब, राहुल रंजन, गांव सिमरवारा, दुर्गापुर, जिला वैशाली बिहार, मनीष कुमार, गांव है आलमपुर सिमरी, जिला मुजफ्फरपुर बिहार, प्रणव द्विवेदी, बलरामपुर उत्तर प्रदेश, जितेंद्र कुमार, आपका गांव है पसिया, जिला गया बिहार, मुकुल घोष, धनबाद झारखंड से, लोकेश अर्जुन, समृत नागपुर महाराष्ट्र से, खुशबू कुमारी, उत्तम नगर दिल्ली से और मनीषा सिंह, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। दोस्तों आज आप सबके लिए या आप सब में से कुछ लोगों के लिए, खासकर वे जो ऑफलाइन क्लासेस के लिए यानी कि 15 से 29 मार्च की क्लासेस के लिए आना चाह रहे हैं, एक महत्वपूर्ण सूचना है। और सूचना यह कि इससे पहले मैंने आप सबको इन्फॉर्म किया था कि अभी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं उन पर 2000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है और यह डिस्काउंट 13 जनवरी तक वैलिड है यानी कि 13 जनवरी तक मान्य होगा। और आज 13 जनवरी है तो कोई विशेष बात नहीं, मैं केवल आप लोगों को याद दिला रहा हूं कि आज 2000 रुपये के डिस्काउंट का अंतिम डेट है, उसकी अंतिम तारीख है। हालांकि एडमिशन ठीक है, आगे भी जारी रहेंगे, लेकिन यदि आप 2000 रुपये का डिस्काउंट का लाभ उठाना चाहते हैं तो उसकी आज अंतिम तिथि है। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय में मैं आपसे प्री एग्जामिनेशन में बैठें या नहीं इस विषय पर बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं के बारे में मैं आपको बता दूं। न्यूज़ आपने सुनी होगी, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक तथ्य रेखांकित किया है और वह जल आधारित पर्यटन। जल आधारित पर्यटन, पर्यटन आपके सिलेबस के हिसाब से अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी ने जल आधारित पर्यटन की बात कही है तो मुझे लगता है कि इस पर आपको विशेष रूप से फोकस करना चाहिए। तो मैं केवल संकेत भर कर रहा हूं, मुझे अगर अवसर मिलेगा तो हम लोग इस पर आगे चलकर बात करेंगे। आप जानते हैं कि खेलो इंडिया युवा खेल प्रतियोगिता शुरू हो गई है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में तो इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन दूसरे एग्जामिनेशन की दृष्टि से आप थोड़ा सा महत्वपूर्ण मान सकते हैं जो गुवाहाटी में चल रहा है। और ठीक इसी तरह से एक घटना और भी इस बीच में घटी कि यूक्रेन का जो विमान आ रहा था उसे ईरान की जो मिसाइल है उसने मार गिराया और उसमें जितने भी यात्री सवार थे वो सबके सब मृत्यु को प्राप्त हुए। तो दोस्तों ये जो यूक्रेन का विमान है ईरान ने मार के गिराया है, बस थोड़ा सा तथ्य दिमाग में रखिए। और सच पूछिए कि इस घटना के बाद जो ईरान था वो एक प्रकार से विश्वालोचना का शिकार भी बना और कहा जा रहा है कि अभी जो ईरान और अमेरिका के बीच में इतना तनाव बढ़ा था उसको कम करने में इसकी भूमिका इस मायने में रही है कि ईरान कहीं ना कहीं इसकी वजह से विश्व मंच पर कमजोर पड़ने लगा। इससे पहले दो बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं घटनाएं थी, आप कह लीजिए कि खबरें थी। पहला तो यह है कि कोयला खदानों का निजीकरण करने के मामले में सरकार ने और अच्छे कदम उठाए हैं, इसके बारे में हम लोग कभी बाद में चर्चा करेंगे। मैंने इससे रिलेटेड न्यूज़ क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड की थी, तो मैं खासकर इसके माध्यम से केवल ये कहना चाह रहा हूं कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है प्री मेंस दोनों के लिहाज से, इसे उन्हें आप ध्यान से तैयार कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। समय मिलने पर मैं भी इस पर बात करूंगा। और ठीक इसी तरह से अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जीवन का अधिकार के तहत इंटरनेट के बारे में जो टिप्पणी की है कि यह भी उसी का ही हिस्सा है, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की है। इसको लेकर के आज मैं आपको एक बिजनेस स्टैंडर्ड का एडिटोरियल कमेंट भी प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब उसे ध्यान से देखिएगा। आपके करंट कंटेंट के तहत एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है जो इनफैक्ट मेन एग्जामिनेशन की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, वह है अपशिष्ट निपटान से बेहतर कल की ओर। ये लेख इकोनॉमिक टाइम्स में छपा था, मेन एग्जामिनेशन के लिहाज से मुझे बहुत महत्वपूर्ण मालूम पड़ रहा है। देखिए मित्रों, देखिए जब मैं कहता हूं कि मेन एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण मालूम पड़ रहा है तो आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि इसका कोई रोल प्री के लिए है ही नहीं और बेहतर है कि हम छोड़ दें। मैं जब ये बात कहता हूं कि यह प्री एग्जाम के लिए और यह मेन एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है तो उसका मकसद केवल इस बात से होता है कि आपको इस टॉपिक को कैसे पढ़ना है। अगर मैं प्री एग्जाम की बात कर रहा हूं तो सीधी सी बात है कि तथ्यों पर गौर कीजिए, दोहरा लीजिए, दिमाग में थोड़ा सा रख लीजिए। और अगर मैं कहता हूं कि मेन एग्जामिनेशन की दृष्टि से, इसका मतलब है कि उसे आपको एनालिटिकल तरीके से पढ़ना चाहिए, पढ़ने के बाद उस पर थोड़ा विचार भी करना चाहिए, और अगर आपको पढ़ने के दौरान कोई बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट लगते हैं तो उन्हें नोट भी कर लेना चाहिए। उसको आप बिल्कुल अलग अलग करके मत देखिएगा कि अरे अरे अब हम तो मेन एग्जामिनेशन में पता नहीं पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, तो चलो अभी तो प्री की तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद वो ये जो नीति है वो बहुत बेहतर नीति नहीं होगी। फ्रेंड्स, आइए अब मैं आज के मुख्य विषय पर आता हूं, और वह है कि आपको प्री एग्जामिनेशन में बैठना चाहिए या नहीं। खासकर इस विषय को मैंने इसलिए चुना है कि अभी दिल्ली में जब स्टूडेंट से मेरी मुलाकात हुई व्यक्तिगत रूप से, तो मैंने देखा कि बहुत से स्टूडेंट यही प्रश्न पूछ रहे थे कि सर हम प्री एग्जाम में बैठें या न बैठें। उस समय मैं उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहा था, लेकिन मुझे लगा कि शायद ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके मन में ये सवाल हैं लेकिन वो मिल नहीं पा रहे हैं, लोगों से सही तरीके से पूछ नहीं पा रहे हैं, अगर पूछ भी रहे हैं तो उन्हें शायद संतोषजनक उत्तर न मिल पा रहे हों, उनके मन में अभी भी द्वंद्व की स्थिति हो। तो मुझे इस विषय को लेकर के शायद आपकी जो द्वंद्व की स्थिति है उसको थोड़ा सा कम करने में अपना रोल प्ले करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए अब इस विषय पर बातें करते हैं। पहली बात तो देखिए कि आप प्री एग्जाम में बैठे या न बैठे, ये पूरी तरह से आपका अपना ही निर्णय होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो तैयारी है वो आपकी है, परिस्थितियां हैं वो आपकी हैं, उसे तो मैं नहीं जानता ना, या कोई भी दूसरा नहीं जानता जिससे आप पूछ रहे हैं। मुझे खाना खाना चाहिए या नहीं, तो ये आप बताएंगे कि आपकी भूख कितनी है, डॉक्टर ने आपको क्या कहा है, आप ये निर्णय लेंगे, क्योंकि आपके भूख के को जानने के लिए मेरे पास कोई पैरामीटर नहीं है। और आप कहेंगे कि नहीं मुझे भूख लगी है, तो आप खुद फैसला कर सकते हैं कि आपको खाना खाना चाहिए। और आप कहें कि नहीं मुझे भूख तो नहीं लग रही, तब भी आप खुद ही निर्णय ले सकते हैं कि जब भूख ही नहीं लग रही तो खाने की क्या जरूरत है, है ना। तो ये जो बात होती है, ये जो इस प्रश्न का जो उत्तर होता है, याद रखिए कि पूरी तरह से इसके बारे में जो सही सलाह कोई आपको दे सकता है, परफेक्ट साइंटिफिक एडवाइस कोई दे सकता है, तो वह आप खुद होते हैं। तो आप कहेंगे कि फिर आपने यह टॉपिक चुना क्यों, और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फिर मैंने यह टॉपिक चुना क्यों। तो मैं आपको वो पैरामीटर्स बताने जा रहा हूं, वो कसौटियां बताने जा रहा हूं, वो पॉइंट्स प्रोवाइड करने जा रहा हूं, जिन पॉइंट्स के आधार पर शायद आपको अपने बारे में निर्णय लेने में मदद मिल सके। राइट, देखिए दोस्तों, जब आप किसी से पूछते हैं कि मैं प्री एग्जामिनेशन में बैठूं या नहीं बैठूं, तो मैं समझ सकता हूं कि आपके दिमाग में जो एकमात्र पैरामीटर है इसके बारे में, वह है आपकी प्रिपरेशन। राइट, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है वो तो कभी पूछेंगे ही नहीं कि बैठूं या न बैठूं। सीधी सी बात है कि आपको अपने प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा डाउट है। अब ये जो प्रिपरेशन के बारे में डाउट है, इसमें दो तरह की प्रिपरेशन है कि मेरी प्री की तो प्रिपरेशन हो गई है लेकिन मेंस ऑप्शनल तो हुआ ही नहीं है, तो फिर मुझे बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि मैं मेंस में निकल जाऊंगा, प्री अगर क्वालिफाई कर भी लिया तो मेरा एक अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा। या फिर ये है कि प्री की ही मेरी तैयारी नहीं है तो मुझे बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए, है ना। इसी तरह के द्वंद्व आपके दिमाग में हो सकते हैं जिसने आपके निर्णय को एक तरह से धुंधला दिया है। देखिए, जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग को सोचने के लिए मैं चार बिंदु उपलब्ध करा रहा हूं। इन चार बिंदुओं का इस्तेमाल आपको करना चाहिए और सबका एक साथ इस्तेमाल करना चाहिए, यह नहीं कि अलग अलग। पहला, मैंने अभी आपकी तैयारी के बारे में बात की कि आपकी तैयारी कैसी है। और जब मैं ये कह रहा हूं कि आपकी तैयारी कैसी है, तो डेफिनेटली परफेक्ट तैयारी तो प्री और मेंस दोनों को लेकर होती है, लेकिन चलिए अब दूसरी बातों पर जब हम आएंगे तो चीजें और क्लियर होंगी। अदरवाइज प्री की तैयारी की बात तो है ही, और अभी आपके पास लगभग 4.5 महीने का वक्त है भी प्री की तैयारी के लिए, और मेंस की तैयारी के लिए 3 महीने बाद अब में आपको और भी मिल जाते हैं। तो देखिए, सीधी सी बात है कि अगर ऑप्शनल की तैयारी थोड़ी बहुत है और प्री की तैयारी अच्छी है तो आपको बैठ जाना चाहिए, कोई बात नहीं, 3 महीने में आप देख लीजिएगा, आगे जो भी होगा वो आप उसके हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। तो पहली जो कसौटी है वह है आपकी अपनी तैयारी। जो दूसरी कसौटी है मित्रों, वह है कि आपके पास अटेम्प्ट कितने हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास बहुत अटेम्प्ट हैं तो ठीक है, तैयारी थोड़ी सी कम भी है तो बैठ जाना चाहिए, क्योंकि साल भर तो वैसे भी लगना ही लगना है। तो अगर आप बैठ जाते हैं और अटेम्प्ट आपके पास पर्याप्त हैं तो आप इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे ही। आपको अनुभव प्राप्त होगा कि नहीं मेरी इतनी तैयारी थी, नहीं यहां यहां मेरी कमजोरियां हैं, एग्जाम में बैठा तो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया, मेरी स्पीड कम है, प्रश्न उलझाने लगे। तो इस तरह से बैठने के बाद आप अपना रिव्यू कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, तो उससे आपको लाभ मिल सकता है, बशर्ते कि आपके पास अटेम्प्ट हो। अगर अटेम्प्ट कम है तो फिर चांस नहीं लेना चाहिए। देखिए अटेम्प्ट के साथ ही साथ फिर यह भी होता है कि आपके पास ईयर्स कितने हैं, अभी एग्जाम में बैठने के लिए आपके पास कितने साल हैं। जब मैं साल कह रहा हूं तो आप इसे अटेम्प्ट से जोड़कर मत देखिएगा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास 7-8 अटेम्प्ट होते हैं, 5 अटेम्प्ट होते हैं, लेकिन उनकी एज अलाउ नहीं करती। अगर एज अलाउ करती भी है तो घर वाले अलाउ नहीं करते हैं, खासकर लड़कियों के साथ तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। अगर विवाह नहीं हुआ है तो माता पिता की तरफ से एक निर्धारित समय होता है कि भाई केवल 2-3 साल का समय है, तुम देख लो। और अगर विवाह हो जाता है तो फिर अलग अलग स्थितियां होती हैं, कभी पति की तरफ से 1-2-3 साल मिल जाते हैं, कभी ससुराल की तरफ से मिल जाते हैं, कभी कभी पर्याप्त समय भी मिल जाता है। ऐसे भी प्रमाण देखने में आए हैं कि ससुराल जाने के बाद उन्हें पर्याप्त छूट दी गई, पर्याप्त समय दिया गया और उन्होंने अपनी सफलता के झंडे गाड़े भी। तो इसे मैं कह रहा हूं, आपके पास तैयारी करने के साल कितने हैं। और लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि अभी आप किस एज पर हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की एक मैक्सिमम एज है, तो इस पर भी डिपेंड करता है। तो अब देखिए मैंने आपको 4 बिंदु बताए हैं और अब मैं रिवर्स गियर में मैं शुरुआत करता हूं। आपके पास एज कितनी है, आप कितने साल तक तैयारी करने की योजना बना रहे हैं, फिर है कि आपके पास अटेम्प्ट कितने हैं, और फिर है कि आपकी तैयारी कैसी है। अब मैंने उल्टा आपको बताया है, आपकी अभी तैयारी कैसी है। इन तीनों के बारे में सोच विचार करने के बाद फिर आप निर्णय लीजिए कि आपको बैठना है या नहीं बैठना है। चलिए एक तरफ ये बात हुई, अब मैं आपको एक अलग बात बता रहा हूं। देखिए अभी 4.5 महीने का समय प्री के लिए है। जैसे मान लीजिए अभी आप सोच लेते हैं कि बैठना नहीं, ऐसा मत कीजिए, अभी आप इसके बारे में निर्णय मत लीजिए, क्योंकि आप सोच लेंगे कि अभी बैठना नहीं है तो आप क्या करेंगे बताइए, आपका दिमाग कमजोर पड़ जाएगा, आप तैयारी करना बंद कर देंगे, अरे यार अगली बार के लिए तो अभी हमारे पास 16 महीने बाकी है, डिसकंटिन्यू कर देंगे। अभी आप भरपूर तैयारी कीजिए, इसके बारे में आप निर्णय लीजिएगा 15 दिन पहले, यानी कि 15 मई के आसपास जाकर के आप निर्णय लीजिए कि मुझे बैठना है या नहीं बैठना है। अभी आप ये जानते हुए भी मैच को भरपूर ताकत और उत्साह के साथ खेलिए कि मेरा हारना पक्का है, तब भी खेलिए, भरपूर उत्साह के साथ खेलिए, एज इफ कि आप जीतने के लिए ही खेल रहे हैं। अभी कोई भी फैसला इसके बारे में मत कीजिए, ये मेरी एक विनम्र आप सबको सलाह है। वैसे आप अपनी स्थितियों के ज्यादा अच्छे से ज्ञाता हैं, आप अपने बारे में ज्यादा सही निर्णय ले सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ मुख्य बातें थी आज के मुख्य विषय के बारे में। अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर। मैंने आपको बताया कि बिजनेस स्टैंडर्ड का जो एडिटोरियल कमेंट्स है वो आप आज जरूर पढ़िएगा। ठीक इसी तरह से बिजनेस स्टैंडर्ड का एक लेख है, वो आपको जरूर पढ़ना चाहिए, शेखर गुप्ता जी का लेख है, युवाओं के ऊपर है। और ठीक इसी तरह से हमारे जो पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं पी चिदम्बरम जी, उनका भी एक लेख युवाओं के ऊपर है। जैसे कि अभी आप स्थितियां देख रहे हैं यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और दूसरी जगहों पर, तो युवा एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो रहा है। तो मेरी सलाह होगी कि आप इन दोनों लेखों को भी बहुत ध्यान से पढ़ें। दोस्तों ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: सुकृति शर्मा मुजफ्फरपुर बिहार से, प्रीति शर्मा, आकाश कुमार ओडिशा से, अनीता शिंदे, रश्मि पैकरा, निशांत नई दिल्ली से, कमलजीत कौर, सुभाष कुमार, रोहित कुमार दिल्ली से और निशा पांडे, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।